वचन।
बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब आनंदित हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मैं स्वागत करता हूं उन मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल के पुस्तक, जो नए नियम के पुस्तक है, उसमें से पहला कुरिन्थियों के पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर के दो राज्य हैं जिसके अधिकारियों के अधीन हमें रहने की आवश्यकता है, और इसके साथ हमने ये भी देखा कि विश्वासियों को एक दूसरे की सहायता करनी है, जिसमें एक दूसरे का न्याय करना है ताकि हर एक विश्वासी बना रह सके। इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि हम परमेश्वर की देह हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 7 से अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम फिर से एक बार आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आँखों को, उनके कानों को, उनके हृदय और विचारों को और एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि जब आपके वचन सुने जाते हैं, निश्चित रूप से आपके वचन हमारे कानों से होकर के हृदयों तक पहुंचने पाए, हृदयों को बदलने पाए, और जो भी उनके तकलीफें हैं, बीमारियां हैं और अन्य प्रकार के तनाव हैं, चिंताएं हैं, दबाव है, बोझ है, आप हर एक चीज़ से उन्हें छुटकारा दें। वचन के सामर्थ्य के द्वारा एक एक के जीवन को प्रभु आप आशीषित करें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है विवाह। बहुत ही रुचिदायक बात है। यह अध्याय विवाह के विषय में है, अर्थात हम यौन संबंधों के विषय में चर्चा करेंगे और आज की तुलना में अत्यधिक मर्यादा के साथ, क्योंकि हम पौलुस के परामर्श पर ध्यान दे रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को आत्मिक सत्यों का बोध कराया था, जिन्हें विवाह से प्रासंगिक बना दिया जाए तो विवाहित जीवन में यौन संबंधों की समस्या का समाधान निश्चित है। आपको स्मरण होगा कि वह कहता है हमारी देह परमेश्वर की संपत्ता है और पवित्र आत्मा का वह मंदिर है, अतः हमारी देह परमेश्वर के महिमान्वन के निमित्त काम में आए। तो आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसका 1 पद। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। मेरे मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट है कि कुरिन्थ के विश्वासियों ने इस समस्या को पत्र में पौलुस के पास भेजा था। हमारे पास उनके प्रश्न तो नहीं है, परंतु पौलुस के उत्तर अवश्य हैं। पौलुस ने इस विषय पर आने में समय लगा दिया है। पौलुस पहले तो उनमें विभाजन के विषय चर्चा करता है, उसके बाद उनमें ठोकर के कारणों पर अपने विचार को प्रकट करता है, परंतु विवाह के विषय भी वह निर्देश देने से पीछे नहीं हटता। वह निर्भीकता पूर्वक कहता है और बेझिझक कहता है। इसके पूर्व कि हम मूल लेख पर मनन करें, मैं 2 आरंभिक विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले तो यह प्रश्न उठता है, क्या पौलुस विवाहित था? यदि वह विवाहित नहीं था तो उसके निर्देशन मात्र कल्पना है, वह अनुभव के आधार पर नहीं कर रहा है। परंतु पौलुस ऐसा कभी नहीं करता था, वह सदैव अनुभव के आधार पर ही सब कुछ कहता था। प्रियो, यह पवित्र आत्मा की रीति नहीं है कि वह ऐसे मनुष्य को चुने जो विषय के संबंध में अज्ञानी हो और उसे लिखने की प्रेरणा दे। पद 7 के आधार पर यह सदैव माना गया है कि पौलुस विवाहित नहीं था। मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से अलग अलग वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। जी हाँ, यदि हम यह मान लें कि पौलुस अविवाहित था तो हमें अगले पद पर ध्यान देना होगा, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। मेरे मित्रों, अब कोई यह कह सकता है कि वह तो यहां भी कह रहा है कि वह अविवाहित है। आपकी बात मान ली, हम जानते हैं कि वह अविवाहित था, परंतु यहां ध्यान दीजिए कि वह 2 वर्गों का उल्लेख करता है, अविवाहित और विधवा। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि वह या तो अविवाहित था या एक विधुर था। मेरे प्रियो, पौलुस की पृष्ठभूमि और उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसे अविवाहित मानना अनुचित प्रतीत होता है। पौलुस यहूदी महासभा का सदस्य था। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस कहता है, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। मित्रों, वह उनके विरोध में सम्मति कैसे दे सकता था? महासभा में अपना मत डालकर, जिसका अर्थ है कि वह महासभा का सदस्य था। क्योंकि पौलुस महासभा का सदस्य था तो स्पष्ट है कि वह विवाहित था। महासभा की सदस्यता के लिए आवश्यक था कि व्यक्ति विवाहित हो। एक यहूदी युवा पर विवाह की बाध्यता थी। मिश्ना के अनुसार विवाह की आयु 18 वर्ष की थी। यबामोत में उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी 2 में टीका में लिखता है कि जिस यहूदी की पत्नी नहीं है वह पुरुष नहीं। मैं यह मानता हूं कि पौलुस का विवाहित होना अपरिहार्य निष्कर्ष है। निसंदेह वह एक विधुर था जिसने दूसरा विवाह नहीं किया। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। मित्रों, मेरे विचार में पौलुस कह रहा है कि यदि वह चाहे तो दूसरा विवाह कर सकता है, उसे ऐसा अधिकार है, परंतु वह नहीं करेगा, क्योंकि उसका सीधा सा कारण यह है कि वह परमेश्वर द्वारा दी गई सेवा में एक स्त्री को साथ लेकर जगह जगह नहीं घूम सकता। मुझे विश्वास है कि पौलुस ने कभी किसी भली स्त्री से प्रेम किया था जो उसके प्रेम के बदले उसे प्रेम देती थी। मेरे कहने का कारण यह है कि पौलुस विवाह के बारे में अत्यधिक कोमलता प्रकट करता है। जब वह इफिसियों के पत्री 5:5 में कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मैं F.W. Farrar का उदाहरण आपको सुनाना चाहता हूँ, लाइफ एंड वर्क ऑफ सेंट पॉल में। अब दूसरा प्रश्न है, क्या पौलुस विवाहित था? क्या उसकी युवावस्था की अग्नि परीक्षाओं में किसी प्रेमी मन का सहयोग उसे प्राप्त था? एक असिद्ध और संतोष रहित विश्वास के कारण उत्पन्न आत्मा के गमनागमन करते संघर्षों में क्या उसके जीवन के विचलित भाव सागर में कोई ऐसा घर था जहां वह अपने निरंतर उठने वाले विचारों से राहत पाता? हम उसके पारिवारिक संबंधों के बारे में बहुत कम जानते हैं। उसके प्राण को व्यस्त रखने वाले आत्मिक के सत्यों में व्यक्तिगत रुचियों को उसने नहीं के बराबर स्थान दिया। इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस प्रश्न का उत्तर हाँ में ही देना चाहिए। मेरे मित्रों, अनेक टीकाकारों का मानना है कि पौलुस विवाहित था और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पौलुस ने उसका उल्लेख तो कभी नहीं किया, परंतु विवाह के बारे में वह जिस कोमलता से चर्चा करता है उससे मुझे विश्वास होता है कि वह एक विवाहित व्यक्ति था। अब हम देखते हैं दूसरा आरंभिक विषय, एक प्रश्न तो नहीं एक कथन है। हमें उस युग के कुरिन्थ नगर को समझना है, यदि नहीं तो हम उस गलत धारणा में फंस जाएंगे कि पौलुस अविवाहित स्थिति को विवाहित स्थिति से अधिक महत्व दे रहा है। मेरे मित्रों, पौलुस की बात समझने के लिए कुरिन्थ नगर की स्थानीय स्थिति को समझना आवश्यक है। पहले दो पदों पर ध्यान दीजिए, 1 कुरिन्थियों 7:1-2 में, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, या अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। ध्यान दीजिए, हमें कुरिन्थ नगर की स्थिति समझना आवश्यक है। मैं प्राचीन कुरिन्थ के खंडहरों का भ्रमण के बारे में सुना है। उन खंडहरों से उभरा हुआ एक पहाड़ है जिसे एक्रोपोलिस या एक्रो कोरिंथियस कहते थे। वह नगर एक्रो कोरिंथिस के साय तले था, जिसकी चोटी पर प्रेम की देवी वीनस का मंदिर था। वह नगर पर एक काले बादल सा छाया हुआ था। आज वहां पर क्रुसेडर किले के खंडहर हैं। जब क्रुसेडर वहां आए तब उन्होंने इसी मंदिर के पत्थरों से अपने लिए किला बनाया था। मेरे मित्रों, यह मंदिर भी अन्य जातियों के मंदिर की नाई ही था। योनाचार वहां का धर्म था। वहां 1000 कथित कुंवारियां थी जो गृह देवी की सेवा में थी। उस मंदिर में भोजन, शराब और काम संतुष्टि उपलब्ध थे। ये कुंवारियां वास्तव में वेश्याएं थी। वहां धर्म के नाम में वासना पूर्ति होती थी। यही तो प्लेटो का दार्शनिक विचार भी था। मेरे प्रियो, मनुष्य प्राय उस संस्कृति की अनैतिकता को भूल जाते हैं। और मुझे एक बार किसी ने कहा, सुकरात ने अपने लेखों में बड़ी गौरवशाली भाषा काम में ली है। जी हाँ, कभी कभी उसकी भाषा गौरवशाली रही है। उसने वेश्याओं को भी कहा है कि वे कैसा आचरण रखें। विचार वास्तव में यह था कि दैहिक लालसाओं को पूरा करके उनसे मुक्ति पाओ। यह विजातीय विचार है। यूनान के दो मुख्य दार्शनिक विचार थे। जीनों के अनुयायी मानते थे कि लालसाओं के प्रति उदासीन रहें। उसके बाद एपिक्यूरस के अनुयायियों का मानना था कि परम सुख प्राप्ति आवश्यक है। मेरे मित्रों, रोमी संसार में पत्नी मात्र चल संपत्ति थी। वह केवल एक मजदूर थी। पुरुष प्रायः अनेक पत्नियां रखते थे। एक पत्नी रसोई घर की, एक बैठक की, एक कपड़ों की देखरेख के लिए आदि। काम संतोष मुख्य बात नहीं थी, क्योंकि पुरुष मंदिर जाते थे जहां सुंदर लड़कियां थी। वे प्रजनन का मौसम मनाते थे। और मेरा विश्वास करें मेरे मित्रों, यह पर्व आज भी वहां पर चला आ रहा है। आप आज फलिस्तीन के बद्दू समाज में यह पर्व मनाया जाता देखेंगे। उनके पास अनेक पत्नियां होती हैं और यह उनके लिए व्यवहारिक माना जाता है, क्योंकि एक पत्नी भेड़ों को संभालती है, एक पति के साथ विचरण करती है, एक घर संभालती है जहां कुछ फलों के पेड़ होते हैं। उनके विचार में पुरुष के पास कम से कम 3 पत्नियां होना चाहिए। मेरे मित्रों, पौलुस विवाह को इस पतित अवस्था से उभार कर ऊंचाइयां प्रदान करना चाहता है और कुरिन्थ के विश्वासियों को कहता है कि उन्हें ऐसा जीवन नहीं जीना है। प्रत्येक पुरुष की एक ही पत्नी होना चाहिए और पत्नी का अपना ही एक पति होना चाहिए। पौलुस ने पत्नियों को अन्य जाति, संसार, रोम के दासी स्तर से उठाकर पुरुष का साथी बनाया। उसने उन्हें उनका अधिकृत स्थान दिया। कुरिन्थ की कलिसिया को पत्र लिखते समय वह इफिसुस में था। वहां भी यही लोकाचार था क्योंकि वहां डायना का मंदिर था। मित्रों, उसने इफिसुस की कलिसिया ही को तो लिखा था कि पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने अपनी कलिसिया से प्रेम किया कि उसके लिए अपने को दे दिया। इसे हम इफिसियों के पत्र 5:25 में देखते हैं। अब आप कहेंगे कि उसने पत्नियों से भी तो कहा कि अपने अपने पति की आज्ञा माने। मित्रों, मैं जानना चाहूंगा कि उसने ऐसा कहां लिखा है। हाँ, उसने यह अवश्य लिखा है जिसे हम इफिसियों की पत्री 5:22 देखते हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या आपने अधीन शब्द का वास्तविक मूल अर्थ जानने का प्रयास किया है? अधीन का मूल अर्थ है प्रतिक्रिया दिखाओ। पत्नियां अपने अपने पति के प्रति प्रतिक्रिया दिखाएं। पुरुष अग्रगामी है, वह प्रेम की अभिव्यक्ति का आरंभ करता है और पत्नी उसे ग्रहण करती है। यह केवल काम वासना की पूर्ति नहीं है, इसमें दंपति मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक कथित रूप से और शारीरिक रूप से एक होता है। मेरे प्रियो, पुरुष पहल करता है और पत्नी उसे ग्रहण करती है। परमेश्वर ने आरंभ ही में स्त्री पुरुष को ऐसा बनाया था। उसने स्त्री को पुरुष का उपयुक्त सहायक बनाया था या उसके अनुकूल बनाया था। प्रियो, वह पुरुष का दूसरा भाग है। पति यदि कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो वह प्रतिक्रिया में कहेगी मैं तुमसे प्रेम करती हूं। यदि पुरुष कहे कि उसकी पत्नी उदासीन है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह कहता है कि वह एक असफल पति है और इस दशा का उत्तरदायित्व वही है, जैसा कि आज हम बहुत सारे परिवारों में देखते हैं। पौलुस स्त्री को दासी से उभार कर पुरुष का सहभागी बनाता है। मित्रों, हम अगले पद में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 7:3। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी प्रतिक्रिया दिखाएगी और पति कहेगा कि वह उससे प्रेम करता है। तब हम 1 कुरिन्थियों 7:4 में पढ़ते हैं, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को है। प्रेम की देवी के इस मंदिर में पुरुष न जाए, वह पाप है। प्रेम और यौन का स्थान घर में है, ठीक यही पौलुस यहाँ पर कह रहा है। विवाह का एकमात्र उद्देश्य प्रेम है, वासना पूर्ति नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस ने एक भली एवं महान पत्नी के प्रेम का अनुभव को पाया था। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र के अपने महानुभवों ने पत्नी के प्रेम का अनुभव किया था। उदाहरण स्वरूप आदम और हवा, याकूब और राहेल, बोअज और रूत, दाऊद और अविगेल। अविगेल ने दाऊद से कहा था 1 सामुएल 25:29 में, मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बांधा रहेगा। मेरे प्रियो, जॉन वेस्ली के लिए कहा जाता है कि जब वह अमेरिका आया था तब उसका उद्धार नहीं हुआ था। उसने लिखा था, मैं इस देश में आदिवासियों का मन परिवर्तन करने आया हूँ, परंतु जॉन वेस्ली का मन परिवर्तन कौन करेगा। उसकी कहानी इस प्रकार है कि सरताज ने अमेरिका के एक नीरस कुलीन मनुष्य को भेजा है। उस युग की एक बुरी प्रथा थी कि कुलीन व्यक्ति सर्वोत्तम व्यक्ति से विवाह कर सकता है, अतः उसने एक असामान्य सुंदरी और दृढ़ व्यक्ति की नारी से विवाह किया जो एक विशिष्ट विश्वासी भी थी। अब उनके समुदाय में एक जोशीला युवक प्रचारक आया और इन दोनों में प्रेम हो गया, परंतु उस महिला ने कहा, नहीं, जॉन परमेश्वर ने आपको इंग्लैंड जाने के लिए बुलाया है कि एक महान सेवा को पूरा करें। वही थी जिसने जॉन वेस्ली को इंग्लैंड लौटने पर बाध्य किया कि मेथोडिस्ट कलिसिया को जन्म दे। इंग्लैंड में वेस्ली का मन परिवर्तन हुआ और उसकी पत्नी उसकी प्रेरणा का स्रोत थी। प्रत्येक महान पुरुष के पीछे एक महान स्त्री होती है। मेरे प्रियो, पौलुस विवाहित जीवन के आचरण के निमित्त निर्देशन देता था। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 5 और 6 पद में आगे पढ़ते हैं, तुम एक दूसरे से अलग न रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो यह कहता हूँ वह अनुमति है न कि आज्ञा। मेरे मित्रों, वह कहता है कि यह आज्ञा नहीं पालन हेतु निर्देश है, जिससे कि शैतान विवाहित जीवन के दोनों में से एक को भी परीक्षा में न डाल पाए। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। जी हाँ, ध्यान दीजिए, इसमें पौलुस की पत्नी नहीं थी, उसने दूसरा विवाह भी नहीं किया था, वह अपनी प्रचार यात्राओं में अपनी पत्नी को साथ नहीं रखता था। प्रभु की सेवा में अनेक मनुष्य अविवाहित हैं, यह उनका आत्मत्याग है। कुछ लोग वर्षों अविवाहित रहते हैं तो कुछ आजीवन अविवाहित रहते हैं। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 12 पद में, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से जन्मे हैं और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया है और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। मेरे प्रियो, सेवकाई में प्रवेश के समय मैं एक अविवाहित पुरुष की नकल करता था। मेरे विचार में वह सर्वाधिक आनंद की स्थिति थी, परंतु शीघ्र ही मुझे यह समझ में आ गया कि मेरे लिए वह उचित नहीं, मुझे पत्नी की आवश्यकता है और इसका बोध हुआ। पौलुस कहता है कि यह उचित ही है, प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर से उचित वरदान प्राप्त है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, परंतु यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। मेरे प्रियो, वासना से पीड़ित होने की अपेक्षा विवाह कर लेना ही उचित है। आगे देखते हैं विवाहितों के लिए आज्ञा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। मेरे मित्रों, अब यह एक आज्ञा है, पौलुस इसे स्पष्ट करता है, पत्नी पति को ना त्यागे और पति अपनी पत्नी का त्याग ना करे। यदि वे विवाह विच्छेद करें तो फिर विवाह न करें। कुरिन्थ की कलीसिया में एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। पौलुस द्वारा प्रचार के परिणाम स्वरूप एक परिवार में पति मसीह में विश्वास ले आता था तो पत्नी नहीं, और दूसरे परिवार में पत्नी मसीह को ग्रहण कर लेती थी तो पति नहीं। ऐसी परिस्थितियों में विश्वासी क्या करे? मेरे मित्रों, सही में ये एक बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा हमें परिवार में देखने को मिलता है, और कई बार हम इस बात को देखते हैं जब हम कलीसियाओं में और घरों में मिलते हैं, तो जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। इस वचन को जानते हुए भी हम कई परिवारों में समस्याओं को देखते हैं। पति पत्नी किसी कारणवश अपने व्यवहार से अलग हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ पौलुस कहता है कि वे विवाह न करें लेकिन ये दूसरे विवाह करते हैं जो वचन के विपरीत है। मित्रों, मैं नहीं जानता है कि आपकी कलीसिया में और आपके घर में या आपके लोगों के बीच में इस प्रकार के कितने लोग हैं, लेकिन आज मुझे और आपको इस बात को समझना है कि इसे मनुष्यों ने नहीं परंतु परमेश्वर ने जोड़ा है। इसलिए आप परमेश्वर को आदर देते हुए, हे पत्नी हे पति, अपने अपने पति का आदर करते हुए, पत्नी का आदर करते हुए आप एकजुट हो जाएं, आप सलाह करें, परमेश्वर की निकटता में आए, प्रार्थना करें, एक दूसरे को क्षमा करें और फिर से एक परिवार को बसा लें, क्योंकि परमेश्वर आपको पति और पत्नी के रूप में जोड़ा है और आपको एक परिवार के रूप में देखना चाहता है। मेरे मित्र, आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के निकटता में आए, वही आपको साहस देगा, वही आपको हिम्मत देगा। आज ही आप परमेश्वर से मांगे और देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को देगा, क्योंकि पौलुस इस बात को मुझे और आपको, हम सबको स्मरण दिलाता है कि हम एक परिवार के रूप में पति पत्नी का आदर करें और ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक आशीष है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही उत्तम आशीषों को प्राप्त किया है और एक सही निर्णय आपने अपने जीवन में लिया है। आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसका अनुसरण करें और प्रभु आप सबकी बहुताय से सहायता करेंगे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए, मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए, बख्शी गई जिसकी हर खता, बख्शी गई जिसकी हर खता। शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए, मेरा गम उतना ही बढ़ा। मैं जितना खामोश रहा, मेरा गम उतना ही बढ़ा। रात और दिन मुझ पे खुदा, हाथ तेरा भारी था। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मेरे खुदाया, मेरी खता को तूने माफ किया। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया है खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए।